स्वागत है आपका आप ही के कार्यक्रम ज्ञान यज्ञ में। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान की बातें बहुत काम आती हैं और ज्ञान की गुह्य बातों को समझने के लिए आइए जानते हैं आज की गहरी बात।
आज संसार की बढ़ती हुई समस्याओं का मूल कारण है आज के इंसान की सोचने की शक्ति। इतिहास के पन्नों को उलटकर हम देखें तो आज जितनी भी महान विभूतियाँ हमारे सामने हैं, जो हमारी आदर्श हैं, उनकी महानता का कारण ही उनकी विचार शक्ति है। विवेकानंद जी ने कहा था कि योर थॉट्स आर योर पावर, अर्थात आपके विचार ही आपकी शक्ति हैं। विचार एक बीज की भांति होते हैं। जिस प्रकार एक सेब में कितने बीज होते हैं यह बताना आसान है, परंतु एक बीज से कितने सेब बनेंगे यह हम नहीं जान सकते। ऐसे ही हमारे विचार होते हैं। जैसा विचार हम अपने मन द्वारा बुद्धि में डालते हैं, वैसा ही कर्म बनकर वह हमारे सामने आ जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम पहले अपने विचारों को सही दिशा प्रदान करें, तभी हम अपने जीवन को श्रेष्ठ व अद्भुत बना सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द फ्रूट यू हैव टू चेंज द रूट।
पिछले एपिसोड में हमने राजयोग की दो अवस्थाएं जानी। आज हम एकाग्रता व अनुभूति से राजयोग का पूरा पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं जानेंगे हमारी अगली कड़ी राजयोग की अवस्था ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी से।
अब तीन तीन समानता है, अब भगवान के साथ दोस्ती जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं ना। और जिसका दोस्त भगवान हो, ईश्वर हो, उसका क्या कहना? अब दोस्त को कैसे याद करते? माता पिता को तो गुणों के आधार पर याद करेंगे, टीचर को ज्ञान को लेकर के याद करेंगे, सतगुरु से वरदान प्राप्त करने की भावना से याद करेंगे, लेकिन दोस्त को कैसे याद किया जाता है? मित्र को याद करेंगे, कोई भी मन में विचार आया ना, कई बातें हैं जो अपने माँ बाप से छिपाएंगे, लेकिन दोस्त को सब कुछ सुना देते हैं। कोई भी विचार तक आता है तो भी पहला विचार यही आता है, ये बात मैं अपने दोस्त को जरूर सुनाऊंगा, उसको अच्छी लगेगी ये बात। सोचते ना ऐसे, मन में कोई विचार आया तो भी उसको सुनाने के लिए जैसे अंदर में सोच लेते, ये बात उसको जरूर बतानी, ये बात उसको बतानी। हर विचार, एक बार एक भाई से हमने कहा कि आप थोड़ा मदद करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, संडे का दिन था, हमने कहा थोड़ा मदद करेंगे आश्रम पर, तो उसने मेरे को कहा नहीं बहन जी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मुझे जरा भी टाइम नहीं है, लेकिन कल मैं जरूर मदद करूंगा, आप जितना घंटा कहेंगे मैं उतना घंटा सेवा के लिए दे दूंगा। हमने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वो आश्रम से निकला और बाहर रास्ते पर उसका कोई दोस्त मिल गया, उसको बातें करने लग गया, उसको टाइम का पता नहीं चला। अचानक एक घंटे के बाद मुझे कहीं बाहर जाना हुआ, जब मैं बाहर गई तो देखती हूँ वही खड़ा है, तो हमने उसको कहा भाई साहब आपके पास तो टाइम नहीं था और अभी तक आप यही खड़े हैं, एक घंटा हो गया। तो घड़ी के तरफ देखकर कहता अच्छा एक घंटा हो गया, पता ही नहीं चला, क्या करूं बहन जी, ये मेरा दोस्त मिल गया ना, बातें करने में लग गए। दूसरे दिन मैंने ऐसे ही उसको पूछा, एक घंटे से आप खड़े रहे वहां पर, आपको पता नहीं चला, क्या बातें की आपने? एक घंटे तक क्या बातें किया, इतनी क्या जरूरी बातें थी। वो सोच में पड़ गया कि मैंने क्या बातें किया। फिर मेरे को कहता है बस यूं ही बातें चल रही थी। तो दोस्त के साथ कैसे बातें होती है, यूं ही बातें होती है ना। तो भगवान से भी यूं ही बातें करो ना, नहीं कर सकते हैं। जो मन में विचार आए उसको सुना दो, उसको दोस्त बना दो। बातें करने के लिए टाइम कम पड़ेगा आपके पास ना? और अगर कहो कि भगवान को याद करना बंद करो तो ये शिकायत ही समाप्त हो जाएंगी कि मैं भगवान को कैसे याद करूं, मैं भगवान में मन कैसे एकाग्र करूं। ये शिकायत समाप्त हो जाएगी। दोस्त बना दो और जो मन में विचार आए उसको सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, तो टाइम कम पड़ जाएगा आपको। ये शिकायत समाप्त हो जाएगी कि मैं भगवान को कैसे याद करूं। लेकिन हर कर्म करते उसकी याद ऐसी समा जाएगी जो नेचुरल कर्म योगी जीवन बन जाएगा। आज अगर आपको अपने साथी को याद करना होता है तो कैसे याद करते हैं? साथी को याद करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। कैसे याद करते हैं? साथी जब बनते हैं ना तो अग्नि को साक्षी रखकर फेरे लगाते हैं, और वो फेरे लगाते समय क्या करते हैं? कुछ वायदे करते हैं, जीवन भर साथ निभाने का, हमेशा दुख सुख में साथ निभाने का, ऐसे वायदे करते हैं। भले फिर दूसरे दिन से एक भी वायदा न रहे, है ना, लेकिन उस वक्त तो कितने वायदे कर लेते हैं। ऐसे भगवान अगर मेरा साथी है तो कुछ वायदे हम भी करते हैं, वो भी कुछ वायदे करता है, और उन वायदों के आधार पर हम एक दूसरे के साथ बंधते हैं। कई लोग हमें कहते हैं बहन जी आप लोगों को क्या अनुभव, गृहस्थियों में कितना प्रॉब्लम होता है ना, आप लोगों को तो कोई चिंता नहीं है, कोई गृहस्थ की झंझट नहीं है, ये नहीं वो नहीं, कई लोग हमें कहते हैं। हम कहते हैं वास्तव में अगर देखा जाए ना तो आपका गृहस्थ जो होगा ना छोटा सा होगा, 2, 4, 5, 10 मेंबरों का होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। और जब आपको अपनी लड़की देनी होती है तो क्या करते हैं, जहाँ देनी होती है वहाँ भी देखते हैं वो घर कैसा है, वो वर कैसा है। और अक्सर यही कहते हैं कि हमारी बेटी बड़े परिवार में नहीं चल सकती, उतनी उसमें ताकत नहीं है, इसलिए अगर मियाँ बीबी अलग हो रहे तो ज्यादा अच्छा है, यही कहते हैं ना। लेकिन हमारे अंदर वो हिम्मत थी कि हम भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ करके उसके इतने बड़े परिवार में चल सकते हैं। साथी माना एक दूसरे की बातों को ढक देना। आज हमने भी जब भगवान के साथ उसको अपना प्रियतम साथी बनाया है और उसके घर में जब इतने मेहमान आ जाते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर टेंशन देखा, किसी के चेहरे पर टेंशन देखने को मिला? नहीं मिला ना। क्योंकि सोचो हमारा साथी कितना पावरफुल है। यहाँ कोई कमी पेशी हुई आपको ना? कोई सुविधाओं में कोई कमी पेशी आई, खाने पीने में कहीं पर भी आई? नहीं आई, नहीं आई ना। तो ना किसी के चेहरे पर टेंशन देखा, कोई कमी पेशी भी नहीं आई। अब ऐसा हो सकता है, जहाँ इंसान हो वहाँ गलती तो होगी ही, लेकिन फिर भी आपको गलती दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा साथी इतना अच्छा है कि जहाँ गलती हुई होंगी ना वहाँ आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी डाल दी जो आपको दिखाई नहीं पड़ा है? और ये साथी ऐसा है जो कभी डांटता भी नहीं है, कभी मारता भी नहीं है। दुनिया में तो साथी ऐसे होते एक दूसरे को मारने में भी देर नहीं करते हैं, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो डांट देते हैं। तो इसलिए ये नहीं समझो कि अरे बहन जी आपको क्या मालूम गृहस्थों की झंझट क्या होती है, कौन बड़े गृहस्थी है, आप बड़े गृहस्थी है, हम बड़े गृहस्थी है ना? हम बड़े गृहस्थी हुए ना, तो गृहस्थी का अनुभव तो होना ही चाहिए ना। तो हम बड़े गृहस्थी है, आपके तो पास चार मेंबर होते जिनका मन संभालना पड़ता है, लेकिन हम इतने बड़े गृहस्थ यहाँ रहने वाले जितने भी भाई बहन है 100, 200, 500, 1000, वो सबका मन संभालने का। और वो कोई नॉर्थ से आया, कोई साउथ से आया, कोई ईस्ट से आया, कोई वेस्ट से आया, सबके संस्कार अपने अपने, सभी का कल्चरल बैकग्राउंड अपना अपना, फिर भी अगर साथ मिलकर चल रहे तो वो साथी कितना पावरफुल है। तो इसलिए भगवान जिसका साथी हो उसका क्या कहना है ना। और फिर उसको भी बच्चे बना सकते हैं, जैसे शास्त्र में दिखाते हैं कि सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या कर दिया, बच्चा बना दिया। और भगवान ने भी बच्चा बन करके वो सुख दिया उसको, क्योंकि आप उसको अपना बच्चा बना दो, देखो वो बेटा बन के सेवा करता है या नहीं करता है। जो आपका बेटा नहीं कर सकेगा वो सेवा करेगा। जो संबंध आपको अति प्यारा लगे, मात पिता का लगे, तो भी आपको हर कदम में मदद करेगा, छत्र छाया बन करके चलेगा। दोस्त बना दो तो दोस्ती भी निभाएगा, गुरु के रूप में याद करो तो आपका भाग्य ही पलट देगा वो, साथी के रूप में याद करो तो कभी आपकी कमी पेशी किसी को दिखाई नहीं देंगी। और उसको अगर बच्चा भी बना दो तो बच्चा बन करके भी वो आएगा। तो सर्व संबंधों का सुख वो परमात्मा दे सकता है जिसके साथ सर्व संबंध आप जोड़ सकते हैं। और जब आपका ऐसा संबंध जुड़ जाता है तो इतना प्यार उत्पन्न होता है, उससे दिल ही दिल बातें करते रहो, फिर जब भी आप योग में बैठेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। तो तीसरी अवस्था जो है एकाग्रता, अपने आप मन एकाग्र हो जाएगा और वो शक्ति अपने अंदर ऐसी अनुभव होगी कि जैसे कि चारों ओर वो शक्ति फैलती जा रही है, दूसरों को भी आपसे अनुभव होगा कि ये व्यक्ति के अंदर कोई शक्ति है, कोई दिव्यता है। और एकाग्रता में कैसा अनुभव होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक होता है वो तैरने वाले, देखे हैं ना तैरने वाला, जो तैरने वाले होते, एक होता है नदी में या तालाब में तैरने वाले, एक होता है समुद्र में तैरने वाले। और समुद्र में तैरने वाले भी दो प्रकार के होता है, एक लहरों के साथ टकराने वाले और एक है समुद्र के भीतर चले जाने वाले। दोनों का अपना अपना अनुभव है, लहरों से जो टकराते हैं उसका अनुभव अपना है और जो समुद्र के भीतर चले जाते हैं वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, और दूसरी दुनिया में जाकर उसके अनुभव ही कुछ और होते हैं। ठीक इसी प्रकार एकाग्रता की जो है, विचार सागर मंथन की जो स्थिति है, वो है लहरों से टकराने वाली स्थिति, उसका आनंद अपना है। लेकिन एकाग्रता माना जब समा जाना, खो जाना, अंदर चले जाना, वो समुद्र के भीतर चले जाना, वो भी तैरक होते हैं। और जब वो समुद्र के भीतर चले जाता माने एक दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच जाते, और वो दुनिया को ढूंढने में या समझने में कहां समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऊपर वाले जब रस्सी खींचते हैं, भाई ऊपर आओ तुम अभी, तब उस वो ऊपर आते हैं। इस प्रकार जब एकाग्रता की जो अवस्था होती है, जब उसमें हम खो जाते हैं, समा जाते हैं, तब एक दूसरी दुनिया में हम चले जाते हैं कि जहां पर कितना समय निकल जाता है पता नहीं चलता है समय का भी, और बड़ा आनंद का अनुभव, इतना आनंद का अनुभव होता है वो एकाग्रता। और उसके बाद चौथी स्थिति आती है अनुभूति की अवस्था, कि जिसमें जो अनुभव करना चाहो वो अनुभव कर सकते, कभी माना कोई बात को लेकर किसी ने कुछ कह दिया और आपका मन बड़ा टेंशन में आ गया, बड़ा अशांत हो गया, तो शांति के सागर में चले जाओ, मन शांत हो जाएगा। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, मन बड़ा दुखी हो गया, तो सुख के सागर में चले जाओ और सुख का अनुभव करो। कभी कोई बात को लेकर बड़ा मन उदास हो गया, गम आ गया, तो आनंद के सागर में चले जाओ, आनंद का अनुभव करो। कभी कोई ने प्यार से आपके साथ व्यवहार नहीं किया, तो प्रेम के सागर में समा जाओ और प्रेम का अनुभव करो। जो अनुभव करना चाहो आप परमात्मा से कर सकते हैं, बड़ा अच्छा अनुभव होगा। अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो कि आप माउंट आबू आए हैं, अब तो गर्मी के दिन है इसलिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ठंडी के दिन में आओ ना, दिसंबर जनवरी जब बहुत ठंडी पड़ती है उस समय आके देखना। और मान लो कि आप सुबह सुबह उठे, नहाने गए और वहां पर गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी की बाल्टी रखी हो, क्या अनुभव होगा? बाल्टी में से लोटा भी अपने ऊपर डाला नहीं है, नहाने गए, ठंडे पानी की बाल्टी देख करके सारे शरीर में एक करंट फैल जाएगी, वापस बाहर निकल आए, किसी ने कहा क्या हुआ, तो बहुत ठंडी है, पानी इतना ठंडा है, डालेंगे तो बीमारी हो जाएंगे ना। उसने कहा आपने डाला भी नहीं, हाथ भी नहीं डाला है, अनुभव कैसे हो गया? हाथ डालने की जरूरत है क्या? ऐसे ही अनुभव होता है। सोच लिया वातावरण ठंडा है और ये पानी अगर ठंडा पानी मैंने डाला तो क्या हो जाएगा, वो देख भी लिया अंतर चक्षु से, तो सोच लिया, देख लिया, अनुभव हो गया, वो करंट सारे शरीर में दौड़ गया। अगर ठंडी का अनुभव कर सकते हैं अपने विचारों से, तो शांति का अनुभव नहीं हो सकता है? विचारों से है, विचारों की तो बात है, जिस क्वालिटी के विचार करेंगे आप वैसा अनुभव करेंगे। मान लो कि आप किसी के घर में गए हैं और बातें करते 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 रात को 12-1 बज गए, आपने कहा भी चलो 12-1 बज गया मैं जाता हूँ घर, वो मित्र ने आपको कहा अरे भाई ये रात का समय हो गया है, क्यों जाना चाहिए, यहीं सो जाओ, घर में और तो कोई है नहीं जो तेरा इंतजार करेगा, यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। उसने कहा नहीं नहीं यहाँ से 15 मिनट का ही तो रास्ता है, मैं चला जाता। वो मित्र ने कहा भी आपको अरे एकांत का रास्ता, 1 बज गया टाइम ठीक नहीं, वो एकांत का जो रास्ता आता है वहाँ डर जैसा लगता है, क्यों जाना चाहिए, कहा कोई डर नहीं लगता है, मैं जाता हूँ, रोज का रास्ता है मेरे लिए, वो निकल पड़ा। अब जैसे ही वो एकांत वाले रास्ते पर आया और कुछ आवाज सुनाई दिया उसको, क्या होता है, पसीना छूटता है, ठंडी के दिन हो पसीने छूटते हैं कि नहीं छूटता है, और जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाते गए वो आवाज बढ़ता गया, क्या होता है, डर लगता है, पसीना छूट गया। वापस मुड़ करके वो मित्र के घर में आ गए, मित्र ने पूछा क्या हुआ, कहते आज जो मैंने डर का अनुभव किया ना, जिंदगी में कभी नहीं हुआ ऐसा। डर का अनुभव कैसे हुआ, सोच लिया ना, कोई आवाज है, अब आवाज और कुछ नहीं था, सूखे पत्तों का ही आवाज होगा, लेकिन सोच लिया, क्योंकि पहले आपके दिमाग में विचार भरे गए थे, एकांत का रास्ता है, ये टाइम ऐसा है, वो कोई भी रास्ते में डर लगने जैसी बातें हो, तो जैसे विचार आपको भर दिए गए थे तो चलते चलते वही विचार आने लगे, और जैसे जैसे विचार आने लगे उस आवाज के साथ आपके अंतर चक्षु से आपने कोई ऐसा दृश्य देखने लगे, अनुभव हो गया। अगर डर का अनुभव कर सकते हैं तो आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, तो अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वैसी क्वालिटी के विचार निर्माण करो और अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए ये है योग की 4 अवस्था, पहली विचार सागर मंथन अवस्था, जिसमें से हर एक को गुजरना पड़ता है। दूसरी है रूहान की अवस्था, जहाँ संबंध जोड़ करके हम उसके साथ बातचीत करते हैं। फिर है मन की एकाग्रता और चौथी है अनुभूति की अवस्था। तो ये था आज का लेसन, योग की विभिन्न अवस्थाएं। ओम शांति।
तो आज हमने जाना कि राजयोग के द्वारा हमारे विचारों का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है। यदि विचार ही शुद्ध हो जाएं, तो हमारे जीवन की राह सुलभ व सहज हो जाती है। आज हमारा विषय ही राजयोग है। इस विषय को और गहराई से जानने के लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट राजयोग की अनुभूति, जहां हम अपने विचारों के द्वारा ईश्वर के साथ की अनुभूति करेंगे। इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। मुझ आत्मा के पिता रूप में बिंदु, किंतु गुणों में सिंधु हैं। मैं कितनी परम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ कि मैं भगवान की लाडली संतान हूँ। वो मेरा पिता है, मेरे जीवन का पालनहार है, मेरा भरता है, मेरे जीवन की नैया का खिवैया है। मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ कि भगवान मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरा सच्चा साथी है, हर पल मेरे साथ मेरी मदद को हाजिर रहने वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड कितना प्यारा व निराला है। वह सर्व गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। मेरा साथी पल पल मुझे गाइड करने वाला, मुझे सही राह दिखाने वाला मेरा साथी मेरा भगवान है। मैं आत्मा उसकी सच्ची सच्ची दोस्त हूँ। आहा, मैं आत्मा कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ जो मुझे भगवान के रूप में पिता व दोस्त दोनों ही मिल गए। मैं आत्मा कितना सुखद अनुभव कर रही हूँ। आज इस सुखद अनुभव ने मुझ आत्मा को धन्य कर दिया। मेरा कितना परम सौभाग्य है कि मैं परमात्मा की हूँ और परमात्मा मेरा है। यह मेरे जीवन की परम उपलब्धि है। इसी खुशी के साथ मैं आत्मा आज भरपूर हो गई। ओम शांति। आज की मीठी मुलाकात बस यहीं तक।